अध्याय 5 आर्यों का आदि देश। हम पिछले अध्याय में उल्लेख कर चुके हैं कि सैंधव सभ्यता के प्रवर्तक अनार्य थे, जो शांति प्रकृति के मनुष्य थे। कालांतर में कदाचित युद्धकर्मा आर्यों ने उन पर आक्रमण किया और अपनी विकसित युद्ध प्रणाली तथा अपने उच्चतर सैनिक संगठन के कारण उन्हें पराजित किया और उनकी सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस प्रकार सैंधव सभ्यता के ध्वंसावशेषों के ऊपर आर्य सभ्यता की नींव डाली गई। इस उदीयमाना नवीन सभ्यता के प्रवर्तकों के लिए प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्य का अर्थ एकमात्र उत्तम अथवा श्रेष्ठ होता है। कदाचित भारतवर्ष के मूल निवासियों के विरुद्ध अपनी उच्चता एवं श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए भी नवागंतुकों ने अपनी जाति के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया था। इसके साथ साथ मूल निवासियों को उन्होंने दस्यु अथवा दास आदि के हीनताधोतक शब्दों से संबोधित किया। इन आर्यों का आदि देश कौन सा था, इस पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। इस विवादग्रस्त प्रश्न को हल करने के लिए विद्वानों ने प्रमुख 5 साधनों इतिहास, भाषा विज्ञान, पुरातत्व, शरीर रचना शास्त्र और शब्दार्थ विकास शास्त्र का प्रयोग किया है, परंतु इसके निष्कर्ष इतने भिन्न हैं कि आज भी यह प्रश्न उतना ही विवादग्रस्त है। साधारणतया हम यही कह सकते हैं कि आर्यों का आदि देश भिन्न भिन्न 4 क्षेत्रों में बताया जाता है। आर्यों का आदि देश भारत। कुछ विद्वानों का यह मत है कि आर्य भारतवर्ष में बाहर से नहीं आए थे, वे इसी देश के मूल निवासी थे। पहला, सप्त सैंधव। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का आदि देश माना है। इस प्रदेश में सिंधु, वितस्ता, असिकनी, परुषनी, विपाशा, शतुद्री और सरस्वती नामक 7 नदियां बहती हैं। इन्हीं के द्वारा सींचा गया उत्तर प्रदेश प्राचीन काल में सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से प्रख्यात था और यही प्रदेश आर्यों का आदि देश था। डॉक्टर दास का कथन है कि प्रारंभ में संपूर्ण आर्य सम्मिलित रूप से इसी प्रदेश में रहते थे। कालांतर में इनके बीच धार्मिक मतभेद उत्पन्न हो गए। आर्यों का एक वर्ग देवों का उपासक रहा और दूसरा वर्ग असुरों का उपासक हो गया। दोनों वर्गों में भयंकर युद्ध हुआ, जो वैदिक साहित्य में देवासुर संग्राम के नाम से उल्लिखित है। इस संग्राम में असुर उपासक परास्त हुए और वे सप्त सैंधव प्रदेश को छोड़कर पश्चिम की ओर चल पड़े तथा ईरान में जाकर बस गए। पारशिकों के प्राचीनतम ग्रंथ जैन अवस्था में जिस अहुरमज़दा अर्थात असुर मेधावी का वर्णन है, वह ईरान में नवागत विरोधी आर्य वर्ग का ही देवता था। डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी सप्त सैंधव को ही आर्यों का आदि देश माना है। दूसरा, ब्रह्मर्षि देश। महामहोपाध्याय पंडित गंगानाथ झा का मत है कि आर्यों का आदि देश भारतवर्ष का ब्रह्मर्षि देश था। तीसरा, मध्य देश। डॉक्टर राजबली पांडे भारतवर्ष के मध्य प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। यहीं से वे पश्चिमी भारतवर्ष, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया पहुंचे थे। ऋग्वेद में सप्त सैंधव का वर्णन अवश्य है, परंतु इसकी रचना तो उस समय हुई थी जब आर्य अपने मूल निवास स्थान मध्य देश को छोड़कर पंजाब में आ गए थे। चौथा, कश्मीर। श्री एलडी कल्ल के मतानुसार कश्मीर अथवा हिमालय प्रदेश को आर्यों का आदि देश समझना चाहिए। पांचवा, देविका प्रदेश। मुल्तान में देविका नामक एक नदी है। श्री डी एस त्रिवेदी इसी नदी के समीपवर्ती प्रदेश को आर्यों का आदि निवास स्थान मानते हैं। भारत को आदि देश मानने वाले विद्वानों के तर्क। यदि हम भारतवर्ष को आर्यों का आदि देश मानने वाले विद्वानों के कथनों का अध्ययन करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि वे स्थूलतया निम्नलिखित तर्कों पर अवलंबित हैं। पहला, ऋग्वेद के वर्णन से स्पष्ट होता है कि आर्यों का ज्ञान पंजाब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र तक ही सीमित था। इस आदि ग्रंथ में वर्णित पलिक अवस्था एकमात्र इसी सप्त सैंधव प्रदेश प्रतीत होती है। अतः आर्य इसी प्रदेश के आदि निवासी थे। यदि वे कहीं बाहर से आए होते तो उनके आदि ग्रंथ में उस पर्व स्थान का उल्लेख अवश्य होता। दूसरा, यदि आर्य विदेश से भारत में आए थे तो क्या कारण है कि उनके ग्रंथ अपनी उस विदेशी जन्मभूमि में अथवा अपने प्रयाण मार्ग के किसी अन्य स्थल पर नहीं मिलते। उनके एकमात्र ग्रंथ ऋग्वेद की भारतीय रचना से स्पष्ट हो जाता है कि वे भारतवर्ष के ही मूल निवासी थे और इसी देश में अपनी संस्कृति सभ्यता के पर्याप्त विकास के पश्चात उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। तीसरा, स्वयं वैदिक साहित्य के अंतः साक्ष्य से प्रकट होता है कि आर्य सप्त सैंधव को अपनी मातृभूमि मानते थे। यदि ऐसा न होता तो वे उसके लिए देव निर्मित देश अथवा देवीकृत योनि की संज्ञा क्यों देते। चौथा, वैदिक संस्कृत के अथवा उससे उद्भूत शब्द अत्यंत प्रचुर संख्या में भारतवर्ष के समस्त क्षेत्रों विभिन्न भाषाओं में पाए जाते हैं, परंतु यूरोप और एशिया की भाषाओं में ऐसे शब्द बहुत कम मिलते हैं। यदि आर्यों का आदि देश यूरोप और एशिया का कोई अन्य देश होता तो उनकी वैदिक भाषा संस्कृत की छाप यूरोपीय एवं एशियाई भाषाओं के ऊपर अधिक स्पष्ट होती। ऐसी परिस्थिति में यही अनुमान स्वाभाविक प्रतीत होता है कि भारत ही आर्यों का आदि देश था और से अंतर्देशी एवं अंतर जाति संपर्क होने के बावजूद भी उसकी समस्त प्रादेशिक भाषाओं की शब्दावली मूल आर्य भाषा संस्कृत से प्रभावित है। पांचवा, यह तर्क उपस्थित किया जाता है कि यदि आर्य भारतवर्ष के मूल निवासी होते तो वे इस देश के बाघ और हाथी से अवश्य परिचित होते, परंतु ऋग्वेद में बाघ का कहीं उल्लेख ही नहीं है। पुनः हाथी के लिए मृगहस्तिन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि उनके लिए नवीन और विचित्र पशु था। ब्रैकेट में, इन आपत्तियों में कोई बल नहीं है। किसी वस्तु विशेष के विषय में किसी ग्रंथ का मौन अथवा अनुल्लेख कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। ऋग्वेद में नमक का भी उल्लेख नहीं मिलता, परंतु इसका तात्पर्य यह तो नहीं हो सकता कि ऋग्वेदी आर्य नामक से अपरिचित थे। रही मृगहस्तिन की बात, तो इस शब्द का प्रयोग काव्यात्मकता प्रदर्शित करता है, अपरिचय नहीं। और यदि हम यह स्वीकार भी कर लें कि आर्य बाघ और हाथी से अपरिचित थे, तो इससे इतना ही सिद्ध होगा कि वे भारतवर्ष के उन प्रदेशों से अपरिचित थे जहां बाघ और हाथी की प्रधानता थी। फिर भी पंजाब को उनके आदि देश मानने में कोई बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ इन पशुओं का बाहुल्य ना था। ब्रैकेट क्लोज। छठवा, कुछ विद्वानों ने भाषा विज्ञान के आधार पर भारतवर्ष को आर्यों का आदि देश मानने में आपत्ति की है। इन विद्वानों का कथन है कि आधुनिक विश्व में आर्य परिवार की जो भाषा सबसे अधिक अविकसित परिवर्तन विहीन हो, वही आर्यों की आदि भाषा रही होगी, और जिस देश में यह भाषा व्यवहित होती हो वही आर्यों का आदि देश रहा होगा। इस दृष्टि से इन्होंने लिथ्यू नियन भाषा को आर्य परिवार की प्राचीनतम भाषा माना है और लिथ्यूनिया को आर्यों का आदि देश ब्रैकेट में पर भाषा की अविकसित अवस्था अथवा परिवर्तन विहीनता का कारण उसके बोलने वालों की संकीर्ण एवं परिवर्तन विहीन मनोवृत्ति भी हो सकती है। अन्य अन्य देशों और जातियों के पारस्परिक संपर्क से वंचित रहने पर भी भाषा विकसित नहीं हो पाती, अतः इस विकास विहीनता से लिथ्यूनियन भाषा की सबसे अधिक प्राचीनता सिद्ध नहीं होती। ब्रैकेट क्लोज। आलोचना पर भारतवर्ष को आर्यों का आदि देश स्वीकार करने में निम्नलिखित अन्य कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। पहला, यदि भारतवर्ष आर्यों का आदि देश होता तो वे सर्वप्रथम अपने देश का भी पूर्ण रूपेण आर्यकरण करते, फिर उसके बाद ही दूसरे देशों में जाते। परंतु ऋग्वेद से स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन आर्य मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत, दक्षिणापथ से प्रायः अपरिचित थे, जबकि ईरान और आधुनिक अफगानिस्तान के विषय में उनका भौगोलिक ज्ञान अपेक्षाकृत कहीं अधिक था। इससे अनुमान होता है कि ये किसी पश्चिमी देश से आए थे और ऋग्वेदिक काल तक पंजाबीतर भारत में प्रविष्ट न हुए थे। दूसरा, आज भी संपूर्ण दक्षिण भारत तथा आंशिक रूप से उत्तर भारत की भाषाएं अनार्य परिवार की हैं। इससे अनुमान होता है कि ये प्रदेश मूलतः आर्यों के निवास स्थान थे। तीसरा, बलूचिस्तान में द्राविड परिवार की बाहुई भाषा का पता लगा है। इससे प्रतीत होता है कि भारत का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भी आदितम काल में द्राविड सभ्यता का केंद्र रहा होगा। चौथा, भारतवर्ष की सिंधु सभ्यता निश्चित रूप से अनार्य थी और वैदिक सभ्यता से अधिक प्राचीन थी, अतः भारतवर्ष उन अनार्यों का ही आदि देश कहा जा सकता है। पांचवा, संपूर्ण भारतीय इतिहास यही सिद्ध करता है कि यहां विदेशों से जातियां आई हैं, यहां से कभी भी कोई जाति बाहर नहीं गई। इस सत्य के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कदाचित आर्य भी यहां बाहर से ही आए होंगे, यहां से बाहर नहीं गए होंगे। छठवां, संस्कृत भाषा की मूर्धन्य ध्वनि इंडो यूरोपीय भाषा की किसी भाषा में नहीं मिलती। कदाचित संस्कृत की अवशिष्टता अनार्यों के प्रभाव से आई। आर्य बाहर से भारत में आए और वहां के मूल निवासियों अनार्यों के साथ उनका संपर्क हुआ। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप ही उनकी भाषा में उपयुक्त ध्वनि संबंधी विशेषता आ गई। सातवां, डॉक्टर गाइल्स का कथन है कि इंडो यूरोपीय परिवार की प्राचीनतम भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से हमें जिन वनस्पतियों और पशुओं का ज्ञान प्राप्त होता है वे सब भारतवर्ष में नहीं पाए जाते, अतः यह देश आर्यों का आदि देश नहीं हो सकता। नौवां, पुनः इतिहास में ऐसे उदाहरणों का अभाव है जब कोई जाति स्त्री अपने सुविशाल एवं अत्यंत उर्वर देश को छोड़कर विदेशों में भटकती फिरी हो। यदि आर्य भारतवर्ष के ही आदि निवासी होते तो वे कभी भी इस देश को छोड़कर अन्यत्र जाने की आवश्यकता न समझते। दूसरा, आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव। श्री बाल गंगाधर तिलक के मतानुसार आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था। कालांतर में हिम प्रलय के कारण उन्हें अपनी आदि भूमि छोड़नी पड़ी और ईरान तथा भारत में आकर बसना पड़ा। तिलक जी के मतानुसार ऋग्वेद की रचना सप्तसंध्या प्रदेश में हुई, परंतु इसे ध्यान पूर्वक पढ़ने से प्रकट होता है कि आर्य अपने आदि देश को नहीं भूले थे। ऋग्वेदी वर्णों में स्थान स्थान पर आर्यों के आदि देश उत्तरी ध्रुव के उल्लेख मिलते हैं। श्री तिलक का कथन है कि ये ऋग्वेद के एक सूक्त में दीर्घकालीन उषा की स्तुति है। भारतवर्ष की उषा तो अति अल्पकालीन होती है, दीर्घकालीन उषा को उत्तरी ध्रुव में ही देखने को मिलती है। अतः ऋग्वेद का यह वर्णन वस्तुतः आर्यों के अतीत के अनुभव से संबद्ध है। इसी कारण भारत में सुमेरु पर्वत का वर्णन है, जो देवताओं का निवास स्थान है, जहां अनेक प्रकार की वनस्पतियों और औषधियां उत्पन्न होती थी और जहाँ के दिन और रात छह छह मास के होते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्णन में आर्यों की उत्तरी ध्रुव की स्मृति संरक्षित है। उत्तरी ध्रुव में ही एक वर्ष का अहोरात्र संभव था। हिम प्रलय के पूर्व उत्तरी ध्रुव की ही जलवायु अच्छी थी और वहाँ अनेक प्रकार की वनस्पतियों और औषधियों का उत्पादन संभव था, परंतु हिम प्रलय के पश्चात जलवायु परिवर्तित हो गई और आर्यों को अपना वह सुंदर देश छोड़ना पड़ा, परंतु उसकी स्मृति उन्हें बहुत दिनों तक रही। यही कारण है कि उनके साहित्य में स्थान स्थान पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उत्तरी ध्रुव के संकेत मिलते हैं। श्री तिलक के मतानुयायी ईरानी अवस्था में भी उत्तरी ध्रुव के संकेत पाते हैं। उनका कथन है कि इस ग्रंथ में जिस हिमालय का उल्लेख है वह उत्तरी ध्रुव में आया था और इसी के कारण आर्यों को वह प्रदेश छोड़ना पड़ा था। इस ग्रंथ के अनुसार अहूर मजदा अर्थात ईरानी देवता ने सर्वप्रथम एरियन वेइजो का निर्माण किया। इसका अर्थ वस्तुतः आर्यों का बीज अथवा आदि देश है। यह उत्तरी ध्रुव के प्रदेश में ही स्थित था। अवस्था के अनुसार इस प्रदेश में 10 मास की शीत ऋतु और 2 मास की ग्रीष्म ऋतु होती थी। कतिपय विद्वानों का मत है कि यह भी उत्तरी ध्रुव का ही वर्णन है। पुनः अवेस्ता में अहूर मजदा द्वारा निर्मित विविध देशों का वर्णन है। कुछ विद्वानों के मतानुसार देशों का यह वर्णन आर्यों के प्रयाण मार्ग और विस्तार पर प्रकाश डालता है। आलोचना, परंतु अधिकांश विद्वान आज भी श्री तिलक के मत को स्वीकार नहीं करते। श्री तिलक जिन ऋग्वेदी वर्णों को उत्तरी ध्रुव विषयक समझते हैं वे नितांत संदिग्ध हैं। यदि आर्य उत्तरी ध्रुव को अपना आदि देश मानते होते तो वे सप्तसंध्या को कभी भी देवकृत योनि न कहते। पुनः संपूर्ण भारतीय साहित्य में कहीं पर भी उत्तरी ध्रुव को आर्यों की आदि भूमि नहीं कहा गया है। यदि आर्यों को वास्तव में अपने देश उत्तरी ध्रुव की सुमधुर स्मृति विकल कर रही होती तो कहीं न कहीं उसका स्पष्ट वर्णन होता। श्री तिलक के उपयुक्त उद्धरण साहित्यिक हैं, उनमें आर्यों के आदि देश का बोध संभवतः नहीं होता। तीसरा, आर्यों का आदि देश यूरोप। यूरोप को आर्यों का आदि देश मानने वाले विद्वानों के तर्क दो आधार पर निर्भर हैं। पहला, आज भी इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के शब्द और मुहावरे जितने यूरोप की भाषाओं में विद्यमान हैं, उतने एशिया की भाषाओं में नहीं। इनसे अनुमान यही होता है कि कदाचित यूरोप का ही कोई देश आर्यों का आदि देश था और एशिया का नहीं। दूसरा, यूरोप की लिथुनियन भाषा ही समस्त इंडो यूरोपीय भाषा परिवार अत्यधिक अपरिष्कृत और है और इसलिए अत्यधिक प्राचीन लगती है। अतः लिथुनिया अथवा उसके समीप का कोई यूरोपीय देश आर्यों का आदि देश होगा, परंतु अब प्रश्न यह होता है कि आखिर यूरोप का कौन सा देश आर्यों का आदि देश था। इस संबंध में विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला, हंगरी। काइल्स महोदय का मत है कि आर्यों का आदि निवास स्थान हंगेरी अथवा डेन्यूब नदी की घाटी था। उनका यह मत भाषा विज्ञान के ऊपर निर्भर है। उन्होंने इंडो यूरोपीय परिवार की विभिन्न भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात यह निश्चित किया कि प्राचीनतम आर्यों के आदि देश की भौगोलिक अवस्था क्या थी, वे किन किन अन्नों फलों वनस्पतियों तथा पशु पक्षियों से परिचित थे, इस आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि प्राचीनतम आर्य न तो किसी द्वीप पर रहते थे और न किसी समुद्र तटीय प्रदेश में। कदाचित वे समुद्र से भली भांति परिचित भी न थे। अनुमानतः उनका आदि निवास स्थान तो ऐसे देश में था जो पर्वतों, नदियों अथवा झीलों से घिरा था। संभवतः यह देश शीतोष्ण कटिबंध में था। इनके उत्पादित अन्नों में गेहूं और जौ की प्रधानता थी। आर्यों के परिचित पशुओं में गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, हिरण और भालू विशेष उल्लेखनीय है। हाथी, बाघ, गीध और बत्तख से वे अपरिचित थे। गाइल्स महोदय का निष्कर्ष है कि हंगेरी का देश अथवा डैन्यू प्रदेश ही एक ऐसा भूखंड है जिसमें ये सभी विशेषताएं विद्यमान है। अतः यही भूखंड आर्यों का आदि निवास स्थान रहा होगा। कालांतर में ये आर्य डार्डेन लीस के मार्ग से एशिया माइनर में प्रविष्ट हुए और वहां से मेसोपोटामिया तथा ईरान होते हुए भारत पहुंचे। अपने प्रयाण मार्ग पर स्थित इन समस्त देशों में उन्होंने अपने निवास बनाए। यही कारण है कि समस्त देशों में आर्य इतिहास के अति प्राचीन अवशेष मिले हैं। आलोचना। परंतु गाइल्स महोदय के तर्क और निष्कर्ष असंदिग्ध नहीं है। एकमात्र कतिपय शब्दों के आधार पर कल्पित आर्य देश और आर्य जीवन की रूपरेखा नितांत भ्रामक है। यही नहीं कहा जा सकता कि विश्व में हंगेरी ही एक ऐसा देश है जो भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आर्यों के आदि देश की संपूर्ण विशेषताओं से परिपूर्ण है। पुनः यह भी संभव नहीं है कि शताब्दियों पूर्व हंगेरी की भौगोलिक एवं वानस्पतिक अवस्था वही रही हो जो आज है। इसके अतिरिक्त आर्यों के आदि देश का प्रश्न इतना विवादग्रस्त है कि वह एकमात्र भाषा विज्ञान के आधार पर हल नहीं किया जा सकता। उसके लिए इतिहास, पुरातत्व, शरीर रचना शास्त्र और शब्दार्थ विकास शास्त्र की सहायता भी अपेक्षित है। दूसरा, जर्मन प्रदेश। कुछ विद्वानों ने सहज जाति विशेषताओं के आधार पर आर्यों के आदि देश की समस्या को हल किया है। उनका मत है कि प्राचीनतम आर्यों की सर्वप्रमुख जाति विशेषता थी उनके भूरे बाल। यूनानी पौराणिक परंपराओं में उनके देवता एपालो के बाल भूरे थे। इसी प्रकार प्लूटार्क, कैटो और सूला नामक रोमन शासकों को भी भूरे बालों वाले बताता है। इन उदाहरणों से अनुमान होता है कि प्राचीन आर्यों के बाल भूरे होते हैं। यह विशेषता आज भी जर्मन जाति में पाई जाती है। अतः कदाचित प्राचीनतम आर्य जर्मन के ही निवासी थे। कुछ पूर्व ऐतिहासिक मृतभांड मध्य जर्मनी में मिले हैं। कुछ विद्वान इन्हें प्राचीनतम आर्यों की कृतियां मानते हैं और इन्हीं के आधार पर मध्य जर्मनी को आर्यों का आदि देश बताते हैं। पेनका नामक विद्वान की धारणा है कि भूरे बालों के अतिरिक्त प्राचीनतम आर्यों की जो अन्य शारीरिक विशेषताएं थी वे जर्मन प्रदेश के निवासी स्कैंडिनेवियंस में पाई जाती हैं। अतः स्कैंडिनेविया को ही आर्यों का आदि देश समझना चाहिए। हार्ट महोदय ने भी स्कैंडिनेविया को ही आर्यों का आदि देश माना है, परंतु उनके तर्क का आधार भाषा संबंधी है। उनका कथन है कि स्कैंडिनेविया के ऊपर कभी भी विदेशी जाति का आधिपत्य नहीं रहा और तो भी उनके निवासी इंडो यूरोपीय भाषा बोलते हैं। अतः यह देश प्राचीनतम आर्यों का आदि देश रहा होगा। कुछ अन्य विद्वानों ने पुरातत्व के आधार पर पश्चिमी बाल्टिक समुद्र तट को आर्यों का आदि देश माना है। इनका कथन है कि इस तट पर पूर्व पाषाण काल के अनुगामी काल की अति प्राचीन और सरल वस्तुएं मिली हैं। कदाचित ये प्राचीनतम आर्यों की होंगी। इस मत के प्रतिपादकों में विशेष उल्लेखनीय है मच महोदय। आलोचना। परंतु उपयुक्त सभी तर्कों में शिथिलता है। दीर्घकालीन अंतर जातीय रक्त सम्मिश्रण के पश्चात किसी भी मानव वर्ग में अपनी सहज शारीरिक विशेषताओं का अक्षय अथवा अपरिवर्तित रहना संभव नहीं है। अतः आज एकमात्र शरीर रचना के आधार पर किसी जाति को प्राचीनतम आर्यों के वंशज कह देना उपयुक्त नहीं है। रही भूरे बालों की बात, तो यह तर्क नितांत निर्बल है। भारतीय महाभाष्यकार पतंजलि ने भूरे बालों को ब्राह्मणों का सहज गुण बताया है। अतः इस आधार पर पाश्चात्य विद्वान भारतवर्ष को ही आर्यों का आदि देश क्यों नहीं मानते। ऐसा प्रतीत होता है कि यूनानियों और रोमनों की दृष्टि में भूरे बालों का वाला व्यक्ति विशेष कौतुक का विषय था। कदाचित इस विचित्रता के कारण ही उनका ध्यान भूरे बालों वाले व्यक्तियों की ओर आकर्षित हुआ। अतः उनके उल्लेखों में भूरे बाल जाति गुण नहीं वरन जाति अपवादी थे। इस प्रकार भाषा के आधार पर स्कैंडिनेविया को आर्यों का आदि देश स्वीकार करना भी नितांत संशयात्मक है। प्रथमतः भाषाओं का आयात निर्यात होता रहता है, द्वितीय कभी कभी भाषा की परिवर्तन विहीनता प्राचीनता का द्योतक न हो कर उस भाषा के बोलने वाले मनुष्यों के संकीर्ण और विकास निरपेक्ष मनोवृत्ति की द्योतक होती है। पुनः एकमात्र पुरातत्व की कुछ सामग्री के आधार पर हम बाल्टिक प्रदेश को भी आर्यों का आदि देश नहीं मान सकते, क्योंकि इसी प्रकार की सामग्री अन्यत्र भी मिली है। यही बात मध्य जर्मनी में प्राप्त मृत भांडों के विषय में भी कही जा सकती है। इसी प्रकार के अथवा इससे भी पुराने मृत भांड दक्षिणी रूस, पोलैंड और यूक्रेन में भी मिले हैं। तीसरा, दक्षिणी रूस। नेहरिंग महोदय ने त्रिपोलजे अर्थात दक्षिणी रूस, यूक्रेन में प्राप्त कुछ मृत भांडों का अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि वे 300 ईस्वी पूर्व के हैं। अपनी प्राचीनता के आधार पर ये प्राचीनतम आर्यों की कृतियां प्रतीत होते हैं। आर्यों का आदि देश कदाचित रूस ही था। पोकोर्नो महोदय का अनुमान है कि प्राचीनतम आर्य स्टेप अथवा विस्तृत मैदानों में निवास करते थे। इस प्रकार के मैदान रूस में वेजर और विस्चूला नदियों के बीच में और उसके आगे श्वेत रूस तक है, अतः यही प्रदेश आर्यों का आदि देश रहा होगा। आलोचना, गाइल्स महोदय स्वीकार करते हैं कि रूस का यह प्रदेश अनुमानित प्राचीनतम आर्यों के देश की भांति स्टेप्स है और शीतोष्ण कटिबंध में भी स्थित है, परंतु फिर भी इस क्षेत्र में वे सभी भौगोलिक और वनस्पतिक विशेषताएं नहीं हैं जो तुलनात्मक भाषा विज्ञान के आधार पर आर्यों के आदि देश में होनी चाहिए। चौथा, एशिया। संपूर्ण मतों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि एशिया के किसी देश को ही आर्यों का आदि देश मानना सबसे अधिक उपयुक्त है। इसके कुछ विशेष कारण हैं। पहला, आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ दो हैं, जैनदवस्ता और ऋग्वेद। इनमें प्रथम ईरान में और द्वितीय भारत में मिला है, अतः निश्चित है कि यदि आर्य ईरान और भारत के आदि निवासी नहीं थे तो वे किसी ऐसे देश में आए होंगे जो इन दोनों देश के कष्ठ रहा हो, अतः यह प्रदेश कहीं मध्य एशिया में ही होगा। दूसरा, आर्यों के प्राचीनतम लेख भी एशिया में ही मिले हैं। एशिया माइनर में बोगज कोई नामक स्थान में प्राप्त एक लेख में मित्र, वरुण, इंद्र और नौसियंस नामक वैदिक देवताओं के नाम हैं। यह लेख लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का है। इसी प्रकार बोगज कोई में किक्कुली नामक एक मितानी लेखक का एक ग्रंथ मिला है। इसमें एक 13, 5, 7 आदि संख्याओं का उल्लेख है। ये संख्याएं बहुत कुछ वैदिक संख्याओं के समरूप हैं। इसी प्रकार मिश्र में इल अर्मेना नामक स्थान में कुछ मिट्टी के खंड मिले हैं। ये बेबीलोनिया की लिपि में लिखित है। इन पर कुछ बेबीलोनिया के नरेशो यथा अर्तमन्य, अर्जवीय, यशदत्त, सुतर्ण आदि के नाम हैं। ये नाम बहुत कुछ वैदिक प्रतीत होते हैं। इन लेखों से स्पष्ट है कि प्राचीनतम आर्य एशिया के ही निवासी थे, क्योंकि उनका कोई भी लेख यूरोप में नहीं मिलता। तीसरा, इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीनतम आर्य जिन भौगोलिक अवस्थाओं, वनस्पतियों और पशु पक्षियों से परिचित थे, वे यूरोप के किसी भी प्रदेश में संपूर्णतः उपलब्ध नहीं होते। उनकी उत्पत्ति एशियाई है। एशिया को आर्यों का आदि देश मानने वाले विद्वानों में सर्वप्रथम थे जे जी रोड महोदय। इन्होंने 1820 ईस्वी में ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता के आधार पर यह प्रतिपादित किया कि प्राचीनतम आर्य बैक्ट्रिया के निवासी थे। यहीं से वे पूर्व पश्चिम और दक्षिण की ओर गए थे। पॉट महोदय ने भी इस मत का समर्थन किया और अपने पक्ष में अतिरिक्त तर्क उपस्थित किया कि ऐतिहासिक युग में भी अनेक जातियां मध्य एशिया से ही पूर्व और पश्चिम की दिशाओं में गई थी, अतः यही बात यदि पूर्व ऐतिहासिक काल में भी हुई हो तो आश्चर्य नहीं। सन 1859 में प्रसिद्ध विद्वान मैक्समुलर ने पुनः मध्य एशिया को आर्यों का आदि देश घोषित किया। इनका विचार था कि यही से आर्यों का विभाजन और विस्तार प्रारंभ हुआ। उनकी एक शाखा पूर्व की ओर गई जो इतिहास में इंडो ईरानी आर्य शाखा के नाम से प्रख्यात है। इसी शाखा के आर्य ईरान और भारत में बसे। ये आर्य दीर्घकाल तक साथ साथ रहे थे। इसी से ईरानी और भारतीय आर्यों में बहुत कुछ समता दिखाई देती है। आर्यों की दूसरी शाखा पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर गई और वह यूरोप के विभिन्न देशों में बसी। सन 1874 में प्रोफेसर सेयस ने इंडो यूरोपीय परिवार की विभिन्न भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके मध्य एशिया के सिद्धांत की पुष्टि की। उनका कथन है कि अवेस्ता और ऋग्वेद से प्रकट होता है कि आर्य ऐसे प्रदेश में रहते थे जहां शीत की अधिकता हो, नाव चलाने के लिए जल राशि को, पशुपालन की सुविधा के लिए घास की प्राप्ति होती हो तथा अन्य वृक्षों के साथ पीपल भी उत्पन्न होता हो। इस विद्वान के मतानुसार ऐसा प्रदेश मध्य एशिया का वह भूखंड है जो कैस्पियन सागर के निकट है। मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान के लेखों के आधार पर कुछ विद्वानों ने कप्पाडोसिया को आर्यों का आदि देश माना है। इसी प्रकार एल अर्मना नामक स्थान में प्राप्त बेबीलोनिया लिपि में लिखित कतिपय मिट्टी के खंडों को साक्ष्य मानकर सीरिया को आर्यों का आदि देश होने का श्रेय दिया गया है। एडवर्ड मेयर महोदय ने एक अन्य मत प्रतिपादित किया है। उनका कथन है कि बोगजकोई और एल अर्मना के साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया अथवा सीरिया में लगभग 1400 ईस्वी पूर्व आर्य निवास करते थे। इसी तिथि के लगभग आर्य पंजाब में भी पहुंच चुके थे। मेयर महोदय का मत है कि आर्य न तो वस्तुतः मेसोपोटामिया अथवा सीरिया के निवासी थे और न पंजाब के। ये दोनों प्रदेशों के बीच में स्थित पामीर पठार के मूल निवासी थे। वहीं से इनकी एक शाखा ईरान और भारत में जाकर बसी है और दूसरी मेसोपोटामिया अथवा सीरिया में। इस प्रकार एक ही समय में आर्यों ने दो दिशाओं में प्रयाण किया था। यह समय 2000 ईस्वी पूर्व के लगभग रखा जा सकता है। कालांतर में मेयर महोदय के इस मत का अनुमोदन ओल्डेनबर्ग और कीथ ने भी किया। बेंडस्टीन नामक विद्वान ने शब्दों के क्रमिक अर्थ परिवर्तन के आधार पर एक नवीन दृष्टिकोण उपस्थित किया है। उनका कथन है कि प्रत्येक जाति की भाषा में शब्दों का जो क्रमिक परिवर्तन होता है वह उसके संस्कृति की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का परिचायक होता है। यदि हम इंडो यूरोपीय परिवार की समस्त भाषाओं का अध्ययन करें तो हमें इंडो ईरानी भाषा में ही सर्वप्रथम शब्दार्थ परिवर्तन दृष्टिगत होगा। इस आधार पर बेंडस्टीन महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इंडो यूरोपीय आर्य प्रारंभ में किसी एक स्थान पर सम्मिलित रूप में रहते थे। उस समय उनकी संस्कृति एवं परिस्थिति एक सम थी। कालांतर में एक शाखा उनसे पृथक हो गई और वह ईरान तथा भारत में आकर बसी। यही शाखा इतिहास में इंडो ईरानी आर्य के नाम से प्रख्यात हुई। नई परिस्थिति में रहने के कारण इनकी भाषा में सर्वप्रथम अर्थ परिवर्तन हुए जो इनकी भिन्न सांस्कृतिक अवस्था की भी सूचना देते हैं। परंतु अब प्रश्न यह होता है कि इस विभाजन के पूर्व सम्मिलित आर्य किस प्रदेश में रहते थे। इस प्रश्न को हल करने के लिए भी बेंडस्टीन महोदय ने शब्द परिवर्तन के क्रमिक विकास को आधार माना है। आर्य परिवार की समस्त भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि प्राचीनतम शब्दों से ऐसा आभास मिलता है कि आर्य किसी पर्वत के समीपस्थ एक घास के मैदान के मूल निवासी थे। चूंकि उपयुक्त विवेचना से यूरोप की अपेक्षा एशिया में भी आर्यों के आदि देश होने की अधिक संभावना है, इससे इसी महाद्वीप में किसी पर्वत के समीप कोई स्टेप प्रदेश होना चाहिए। बेंडस्टीन के मतानुसार यह प्रदेश किंगिज का स्टेप्स है जो यूरोल पर्वत के दक्षिण में स्थित है। इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से आर्यों की भौगोलिक परिस्थिति, सांस्कृतिक सभ्यता और जीवन की जो प्राचीनतम झांकी दृष्टिगत होती है उसके विकास के लिए एशिया का किंगिज का घास का प्रदेश सबसे अधिक उपयुक्त है। कालांतर में अपने विकास की दूसरी अवस्था में इंडो यूरोपीय भाषा परिवार में हमें ऐसे शब्द मिलते हैं जो अधिक नम जलवायु तथा उसमें पनपने वाले पशु पक्षियों और वनस्पति की सूचना देते हैं। इस तथ्य से प्रकट होता है कि कुछ आर्य अपना मूल निवास स्थान छोड़कर अधिक नम प्रदेशों में जाकर बस गए थे। बेंडस्टीन का मत है कि आर्यों की एक शाखा तो ईरान और भारत में आई और दूसरी नॉर्डिक प्रदेश एवं यूक्रेन तथा अन्य दक्षिणी और पश्चिमी प्रदेशों में बसी। बेंडस्टीन का यह मत अधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय है। आर्यों के भारतवर्ष में आगमन की तिथि, जैसा कि हमने पीछे उल्लेख किया है कि सिंधु सभ्यता के ध्वंसावशेषों के ऊपर ही आर्य सभ्यता की स्थापना हुई थी। सिंधु सभ्यता की अंतिम अवस्था की तिथि लगभग 2500 ईस्वी पूर्व रखी गई है। अतः इस तिथि के पश्चात ही आर्य सप्त सिंधु प्रदेशों में आए होंगे। कुछ विद्वानों ने निम्नलिखित रूप में तर्क उपस्थित किए हैं। यदि हम मध्य एशिया में बोगज कोई के और मिश्र के एल अर्मना की मिट्टी की टैबलेट्स पर उत्कीर्ण लेखों की भाषा की ऋग्वेदिक भाषा के साथ तुलना करें, तो देखेंगे कि उन दोनों स्थानों में जिस भाषा का प्रयोग किया है वह ऋग्वेद की भाषा से अधिक प्राचीन और अविकसित है। यह भाषा ईरानी जिंद अवस्था की भाषा से भी अधिक प्राचीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि इंडो ईरानी भाषा का विकास 1400 ईस्वी पूर्व के पश्चात का है, अतः ऋग्वेद की रचना स्थिति के पश्चात हुई होगी। इन विद्वानों के अनुसार अनुमानतः ऋग्वेद का रचना काल 1000 ईस्वी पूर्व के समीप रखा जा सकता है। अब यदि हम ऋग्वेद और ईरानी धर्म ग्रंथ अवेस्ता की तुलना करें, तो प्रतीत होगा कि दोनों समकालीन हैं। कालांतर में ईरान के शाखा मनुष्य राजाओं ने अपने अभिलेखों को जिस भाषा में उत्कीर्ण कराया वह अवेस्ता की भाषा का ही विकसित रूप है। इन विद्वानों का अनुमान है कि इस विकास के लिए 400 वर्षों का काल पर्याप्त होगा। अतः इस दृष्टिकोण से अवेस्ता का रचना काल 1000 ईस्वी पूर्व से लगभग आता है। ऋग्वेद और अवेस्ता प्रायः समकालीन हैं, अतः इस अनुमान पर भी ऋग्वेद की रचना का काल 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग आता है। परंतु भारत में आर्यों का आगमन काल ऋग्वेद के रचना काल से प्राचीन है। आर्य यहाँ आए होंगे, उन्हें बहुत दिनों तक यहाँ के मूल निवासियों से संघर्ष करना पड़ा होगा। उस संघर्ष काल के अशांतिपूर्ण अवस्था में ऋग्वेद जैसे ग्रंथ की रचना संभव न थी। यह रचना तो तभी हुई होगी जब आर्य न्यूनाधिक मात्रा में सप्तसंध्या प्रदेश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर चुके होंगे। जिस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी उस समय तक आर्य अपने मध्य एशिया के आदि देश को प्रायः आमूल रूप से भूल चुके थे, क्योंकि ऋग्वेद में उनके आदि देश का कहीं पर वर्णन नहीं है। मध्य एशिया के लेखों की तिथि 1400 ईस्वी पूर्व है, अतः कम से कम इसके 400 वर्ष पश्चात ही ऋग्वेद का रचना काल माना जा सकता है। अपनी प्रारंभिक स्थिति का पूर्ण विस्मरण 400 वर्षों से पूर्व संभव प्रतीत नहीं होता। अतः इस अनुमान से भी ये विद्वान ऋग्वेद की रचना का काल 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग बताते हैं। परंतु बहुत से विद्वान स्थिति को स्वीकार नहीं करते। स्थूल रूप में हम आर्यों के आगमन की तिथि 2500 ईस्वी पूर्व अर्थात सिंधु सभ्यता का विनाश और 1000 ईस्वी पूर्व अर्थात ऋग्वेद की रचना के बीच में रख सकते हैं। संभव है कि यह आगमन की तिथि 2000 ईस्वी पूर्व और 1500 ईस्वी पूर्व के बीच रही हो, परंतु यह तिथि निर्धारण निर्विवाद नहीं हो सकता। आर्यों का आगमन और ऋग्वेद की रचना के काल भिन्न भिन्न विद्वानों ने 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक रखे हैं।